नमस्कार आदाब श्रोताओं, मोबाइल वाणी के बेहद लोकप्रिय और खास कार्यक्रम खबरें जरा हटके में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करते हैं वैसे मुद्दों के बारे में जिससे आपकी जिंदगी का सीधा सरोकार है, वैसी खबरें जो जिंदगी की आपाधापी में हमसे छूट जाती हैं या खबरों की सुर्खियां नहीं बन पाती। तो आइए सुनते हैं खबरें जरा हटके।
दोस्तों, मैं दीपक और मैं आज आपके लिए जानकारी लेकर आया हूँ। भारत के 94 शहरों में से आधे में जहरीली हवा का कहर पिछले 5 वर्षों से 2015 तक भारत में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में असफल होने वाला हर तीसरा शहर देश के दो सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से थे। पिछले 5 वर्षों से 2015 तक केंद्रीय वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 94 शहर में से 17 महाराष्ट्र की ऐसे शहरों की पहचान की गई जो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में नाकाम रहे। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश 15, पंजाब 8 और हिमाचल प्रदेश का 7वां स्थान रहा। 94 शहरों में से आधे इन 4 राज्यों में थे। एक वैश्विक अध्ययन के अनुसार 2015 में गैर संक्रमणीय बीमारियों के कारण भारत में हुई 10.3 मिलियन मौतों में से 2.5 मिलियन प्रदूषण से जुड़ी हुई थी। इस संबंध में इंडिया स्पेंड ने 3 जनवरी 2018 की रिपोर्ट में बताया कि शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और इस कारण पुरानी बाधात्मक फुसफुसिया बीमारी, कैंसर, मधुमेह और अन्य प्रदूषण से संबंधित बीमारियों की घटनाओं में वृद्धि हुई है। यह भी कहा गया कि 27% भारतीयों की मौत वायु प्रदूषण से संबंधित कारकों से हुई है। यह आंकड़े चीन में समान से मृत्यु के अनुपात से अधिक है। कम और मध्य आय वाले समूह प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। उस आय समूह में प्रदूषण के कारण 92% मौतें हुई हैं। कई साल बाद भी वायु प्रदूषण अपनी गति से भारत में बढ़ रहा है, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। सभी को प्रदूषण से लड़ने के लिए इसे अधिक गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। इसके साथ ही वायु प्रदूषण का नियंत्रण जनता की सहभागिता के बिना भी संभव नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य शिक्षा में वायु प्रदूषण की रोकथाम विषय पर पर्याप्त महत्व देने की जरूरत है।
धन्यवाद दीपक। और मैं आज इस विषय पे बोलने जा रही हूँ, वो है मुनाफाखोरी रोकने वाले प्रावधान कितने जरूरी। वस्तु एवं सेवा कर GST के लागू होने का लंबे समय से इंतजार था। इस वजह से केंद्र एवं राज्यों को एक समान कर प्रणाली लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़ी। वस्तुओं एवं सेवा कर की आपूर्ति पर लगने वाली नई कर प्रणाली को GST का नाम दिया गया। इस तरह GST हर एक आर्थिक गतिविधि के स्तर पर लगने वाले विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को एक एकीकृत कर में समाहित कर देता है। GST या VAT लागू होने वाले कई देशों को शुरुआती दौर में महंगाई बढ़ने की स्थिति का सामना करना पड़ा है। रेक स्तर पर करारोपण और दोहरे कराधान की खामियों से निपटना ही GST का प्रमुख उद्देश्य था। इन कारणों से ही कीमतों में वृद्धि होती रही है। सेफगार्ड महानिदेशक को संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने, किसी अन्य एजेंसी या प्राधिकरण की राय लेने, समन जारी करने और जांच करने की शक्ति प्रदान की गई है। हालांकि मुनाफाखोरी रोधी प्रावधान अधिसूचित किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक विस्तृत दिशा निर्देशों का इंतजार है। अभी साफ नहीं है कि मुनाफे की गणना का तरीका मलेशिया की तरह शुद्ध लाभ मार्जिन होगा या ऑस्ट्रेलिया की तरह डॉलर मार्जिन पद्धति अपनाई जाएगी, लेकिन सरकार ने यह साफ कर दिया है कि मुनाफाखोरी रोधी उपायों का मतलब कारोबारियों को मुनाफा कमाने से रोकना नहीं है, बल्कि इसके जरिए उपभोक्ताओं को चालबाज कारोबारियों के चंगुल से बचाना है।
धन्यवाद मधु जी। तो दोस्तों, मैं हूं किशन और आज मैं आपको बताऊंगा इस आधुनिक तकनीक में कैसे विभाजित सर्वोच्च न्यायालय में पारदर्शिता ला सकता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान न्यायपालिका के शीर्षक के अंतर्गत भाग 5 और अध्याय 6 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को एक प्रावधान प्रदान करता है। भारतीय संविधान को उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों के तहत एक श्रेणीबद्ध व्यवस्था से युक्त स्वतंत्र न्यायपालिका प्रदान की गई है। भारत न्यायपालिका के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय को भारत के संविधान को बनाए रखने का सबसे ज्यादा अधिकार है। नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करने का अधिकार है और विधि नियम के मूल्यों को बनाए रखने का भी अधिकार है। इसीलिए इसे हमारे संविधान के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघवाद 1993 में दिए गए निर्णय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के जजों के तबादले इस प्रकार की प्रक्रिया है जो सर्वाधिक योग्य उपलब्ध व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सके। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यालय से राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत और वर्तमान सदस्यों की कम से कम दो तिहाई बहुमत के साथ प्रत्येक सदन में मतदान के साथ सिद्ध हुए न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर निष्कासित किया जा सकता है। हालांकि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में एक न्यायपालिका की जरूरत है, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्य उचित नियंत्रण और संतुलन के बिना अपनी महत्व खो रहा है।
तो दोस्तों, ये थी पिछले दिनों की कुछ खास खबरें। अगर आपके आसपास या आपके क्षेत्रों में भी कुछ ऐसी ही खबरें हैं जो जरा हटके हैं, तो हमें जरूर बताएं। अपने मोबाइल में नंबर 3 दबाकर और साथ ही इस कार्यक्रम को पसंद करने के लिए अभी दबाएं नंबर 5। तो सुनना न भूलें हर बुधवार और शनिवार शाम 4 बजे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम खबरें जरा हटके।